संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 15 अक्टूबर 2021 के बुलेटिन की हेडलाइंस। कोविड-19 के मामलों में कमी, मगर वैक्सीन विषमता अब भी बरकरार। प्रदूषण रहित व टिकाऊ परिवहन की सुलभता पर एक विशेष सम्मेलन। आलस और निष्क्रियता से बढ़ रही हैं बीमारियां, धनी देशों में हैं ज्यादा लोग आलसी। भारत में शिक्षकों की महत्ता व स्थिति पर यूनेस्को की एक खास रिपोर्ट। और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के मौके पर भारत में FAO की प्रतिनिधि शालिनी भूटानी के साथ एक इंटरव्यू। हम आपको याद दिलाते चलें कि मल्टीमीडिया समाचार सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। अब समाचार विस्तार से। अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंदाहार में शुक्रवार को सबसे बड़ी शिया मस्जिद पर एक आत्मघाती हमला हुआ है, जिसमें कम से कम 30 लोगों के मारे जाने और अनेक अन्य के घायल होने की खबरें हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस हमले की तीखी भर्त्सना करते हुए इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाए जाने का आह्वान किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुखिया डॉक्टर टेड्रोस एडिनोम गेब्रियसिस ने कहा है कि वैसे तो कोविड-19 महामारी से होने वाली मौतों की संख्या में कमी आ रही है, मगर वैक्सीन के टीकाकरण में विषमता अब भी बरकरार है। उन्होंने विकासशील देशों को और ज्यादा सहायता व समर्थन की पुकार लगाई है। कोरोना वायरस से जुड़ी खबरों का सार सुनिए सचिन गौड़ से।
कोविड-19 महामारी के कारण होने वाली मौतों की संख्या इस समय लगभग एक साल के दौरान सबसे कम स्तर पर है। UN स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रियसिस।
But it's still an unacceptably high level, almost 50,000 deaths a week.
महानिदेशक गेब्रियसिस कह रहे थे कि ये संख्या कम है, लेकिन अब भी अस्वीकार्य स्तर तक बहुत ज्यादा है। दुनिया भर में हर सप्ताह लगभग 50,000 लोगों की मौतें हो रही हैं, जबकि वास्तविक संख्या निश्चित रूप से इससे कहीं ज्यादा होगी। UN एजेंसी के महानिदेशक ने कहा कि स्वाभाविक रूप से ऐसे देशों में संक्रमण और मौतों के मामले सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं, जहां बहुत कम आबादी को वैक्सीन मिल पाई है। इस बीच स्वास्थ्य संगठन ने महामारी फैलाव के लिए जिम्मेदार वायरसों के मूल स्रोत की पड़ताल के लिए एक नए विशेषज्ञ समूह की घोषणा की है। इस समूह में शामिल 26 वैज्ञानिक महामारी फैलाव की आशंका वाले वायरस के मूल स्रोत के अध्ययन के लिए एक वैश्विक फ्रेमवर्क विकसित करने पर परामर्श देंगे। इसी सप्ताह जारी एक नई रिपोर्ट दर्शाती है कि कोविड-19 के कारण स्वास्थ्य सेवाओं में आए व्यवधान से TB के खिलाफ लड़ाई में वर्षों से हो रही प्रगति को एक बड़ा झटका लगा है। एक दशक से ज्यादा समय में पहली बार TB से होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि हुई है।
सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट यानी टिकाऊ परिवहन के मुद्दे पर चीन की राजधानी बीजिंग में संयुक्त राष्ट्र का दूसरा सम्मेलन हुआ है, जिसमें जलवायु कार्रवाई, आर्थिक प्रगति और टिकाऊ विकास में परिवहन तंत्रों के योगदान पर चर्चा हुई है। UN प्रमुख अंतोनियो गुटेरेश ने इस सम्मेलन को अपने संबोधन में कहा,
The door is closing for action on climate, nature and pollution. We must act together smartly and quickly to make the next 9 years count.
UN महासचिव कह रहे थे कि जलवायु, प्रकृति और प्रदूषण पर कार्रवाई का दरवाजा बंद हो रहा है। हमें अगले 9 वर्षों की अवधि सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए एकजुटता के साथ अक्लमंदी और तेजी से काम करना होगा। UN प्रमुख अंतोनियो गुटेरेश के शब्द। विश्व बैंक के एक अनुमान के अनुसार टिकाऊ परिवहन के जरिए वर्ष 2050 तक $70,000 अरब तक की बचत हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का कहना है कि दुनिया भर में अगर लोग ज्यादा सक्रिय रहें और व्यायाम करें तो हर साल लगभग 50 लाख लोगों की मौत को टाला जा सकता है। कुछ और जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
WHO ने इन हालात में बेहतरी लाने के लिए शारीरिक गतिविधियों और व्यायाम के लिए ज्यादा बेहतर और सभी के लिए आसान व सुलभ अवसर मुहैया कराए जाने की पुकार लगाई है। UN स्वास्थ्य एजेंसी ने अपनी एक नई रिपोर्ट में स्वास्थ्य, खेलकूद, शिक्षा और परिवहन सेक्टरों में निर्णय करने वाली हस्तियों से व्यायाम व अन्य स्वास्थ्य लाभ वाली गतिविधियों व अवसरों को और ज्यादा बढ़ावा देने का आह्वान किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों से मालूम होता है, हर चार में एक यानी लगभग 25% वयस्क और हर पांच में से चार किशोर जन इस समय पर्याप्त शारीरिक गतिविधियों या व्यायाम में हिस्सा नहीं लेते हैं। उच्च आय वाले देशों में निष्क्रिय और आलसी लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, जो कि लगभग 37% है।
यूनेस्को ने भारत में वर्तमान स्थिति में शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका के मद्देनजर देश की शिक्षा स्थिति पर वर्ष 2021 की रिपोर्ट जारी की है। सुनिए दिल्ली से अंशु शर्मा की रिपोर्ट।
शिक्षा सतत विकास की कुंजी है और शिक्षक किसी भी शिक्षा प्रणाली की रीढ़ हैं। यूनेस्को के नई दिल्ली कार्यालय ने भारत में शिक्षकों पर शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2021 यानी स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट तैयार की है। नई दिल्ली में यूनेस्को कार्यालय के प्रमुख एरिक फॉल्ट कहते हैं,
भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षकों को सीखने की प्रक्रिया के केंद्र के रूप में मान्यता देती है, इसलिए हमारी 2021 की रिपोर्ट शिक्षण को समर्पित है, क्योंकि शिक्षकों के बिना कोई कक्षा नहीं हो सकती है और कोई उचित शिक्षा नहीं हो सकती है।
नई दिल्ली में यूनेस्को कार्यालय के प्रमुख एरिक फॉल्ट के शब्द। इस रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों, अल्पसंख्यक बहुल जिलों और भारत के पूर्वोत्तर इलाकों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जहां शिक्षकों और छात्रों के अनुपात में सुधार की जरूरत है। इस रिपोर्ट के मुख्य लेखक पद्मा एम सरंगपाणी ने कहा,
शिक्षक विकास को उन विविध संदर्भों में ढालना चाहिए जिनमें वो काम करते हैं, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों और वंचित समूहों के साथ काम करने के लिए आवश्यक दृष्टिकोण और कौशल में।
इस रिपोर्ट की मुख्य लेखक पद्मा एम सरंगपाणी के शब्द। ICT साक्षरता शिक्षकों के लिए प्रमुख दक्षताओं में से एक के रूप में उभरी है, विशेष रूप से COVID-19 महामारी के मद्देनजर।
दुनिया आज के दौर में जलवायु संकट और जैव विविधता की हानि के कारण बढ़ती भुखमरी का सामना कर रही है। ऐसे में खाद्य व पोषण सुरक्षा एवं आजीविका की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। दिल्ली में UN News की अंशु शर्मा ने 16 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व खाद्य दिवस के मौके पर भारत में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य व कृषि संगठन FAO में राष्ट्रीय सलाहकार शालिनी भूटानी से खाद्य सुरक्षा के विभिन्न आयामों पर चर्चा की। सुनिए ये इंटरव्यू।
ये बताइए, इस वर्ष विश्व खाद्य दिवस की थीम क्या है?
इस वर्ष विश्व खाद्य दिवस पे हम चार सुधार की बात कर रहे हैं। बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर पर्यावरण और बेहतर जीवन, हमारी खाद्य और कृषि प्रणाली में परिवर्तन लाना, इसी के साथ इस साल इस दिवस को मनाया जा रहा है।
एग्री फूड सिस्टम से हम क्या समझते हैं और उसमें किस तरह के बदलाव की जरूरत है आपके हिसाब से?
आज जिस प्रकार से अलग अलग देशों में हम उत्पादन कर रहे हैं, एम्फेसिस ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन और इंटेंसिव एग्रीकल्चर और उपयोग और उपभोग भी जो हम करते हैं, एक्सेसिव यूज मोर देन प्रोडक्शन और कंजम्पशन का जो तालमेल है, इम्बैलेंस है। और तीसरी बात जो नष्ट होता है उत्पादन करते समय भी या कंजम्पशन के समय भी, जैसे शादियों में या त्योहारों में, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। इसलिए इसका सीधा असर हमारी पृथ्वी पर, हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर और जलवायु पर और मौसम पे पड़ रहा है।
ऐसे में सभी देशों को क्या तरीके अपनाने चाहिए जिससे भविष्य के लिए विश्व एक बेहतर खाद्य प्रणाली बना सके?
ऐसी व्यवस्था बनाना, चाहे वो नीतियों के द्वारा हो, योजनाओं के द्वारा हो, या फिर इस तरह से इंसेंटिव्स हो, फिस्कल इंसेंटिव्स हो, जिसकी वजह से एक व्यवस्था बनाए जिसमें एग्रो इकोलॉजी जड़ पकड़ ले।
अगर दक्षिण एशिया और खासतौर पर भारत की बात करें तो यहाँ के जो किसान हैं उनको खेती के तरीकों में किस तरह के बदलाव लाने की आवश्यकता है?
पूरा प्रोडक्शन मैट्रिक्स है कि क्या हम केवल इतना ही देख रहे हैं कि पर एकड़ कितना अन्न पैदा हो रहा है, कितना अनाज निकल रहा है खेत में से, क्या हम ये भी देख रहे हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ फार्मिंग क्या है, उसमें पानी कितना जा रहा है, उसमें एनर्जी कितनी लग रही है, उसमें एग्री इनपुट्स कितने हो रहे हैं, पर उत्पादन किस कॉस्ट पे हो रहा है, उस कॉस्ट को इंटरनलाइज करना, उसके लिए भी नए मापदंड होने चाहिए।
शालिनी भूटानी के साथ इस इंटरव्यू का विस्तृत संस्करण हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, पता है news.un.org/hi। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, अब महबूब खान को अनुमति।